अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो।
ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बाबा के इस घर में पधारे हैं, बाबा की तरफ से, सभी दादियों की तरफ से, मधुबन निवासियों की तरफ से आप सभी का बहुत 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 हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। बाबा का बहुत प्रिय संगठन अभी बाबा के घर में उपस्थित है, क्योंकि बाबा को सभी बच्चे प्रिय है, परंतु फिर भी जो बाबा के समर्पित बच्चे हैं, जो हमेशा बाबा के कार्य में जी हां करके हाजिर है, वो बच्चे बाबा को बहुत 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 प्रिय है। संगम युग का जो उलाहना होता है, कई समझते हैं भक्ति मार्ग में जो भी याद करते थे कि जब स्वयं भगवान सृष्टि पे आया होगा तो ऐसे कौन गोप गोपी होंगे जिन्होंने उनके साथ रास किया होगा। तो सच में ये बहुत भाग्य की बात है, बहुत सुख के महसूसता की बात है। क्या महसूस हो रहा है? वो कौन है? कौन है? हम ही है ना। ये कितने बड़े भाग्य की बात है। तो बाबा ने जिन बच्चों को सिलेक्ट किया है, ड्रामा में, बाबा के यज्ञ में, बाबा के सेवा कार्य में समर्पित होना, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। तो भाग्य तो बाबा ने हमें दे दिया। जब बाबा हमें एडॉप्ट करते हैं और जब हमारा एक संकल्प होता है कि मुझे बाबा के यज्ञ में समर्पित होकर के सेवा करना है, ये एक संकल्प होता है, विचार होता है। और जब हमारा ये विचार चलता है तो बाबा क्या कहते हैं? बच्चे मेरे, जो है जैसा है वैसा अपना लेता है। तुम बच्चे जैसे हो वैसे मेरे हो, तुम जैसे हो वैसे मेरे हो। परंतु फिर बाबा के साथ कार्य में उपस्थित होने के लिए, और फिर बाबा कहते जब मैं वापस ले जाऊंगा तो कैसे ले जाएंगे? जो है जैसे है नहीं ले जाएंगे, ले जाएंगे। एडॉप्ट तो कर लिया, जो हो जैसे हो मेरे हो, परंतु जब वापस घर जाने का समय आएगा तो बाबा कहते हैं मैं जैसा बनाना चाहता हूं वैसा बना करके साथ में ले जाऊंगा। तो अभी वर्तमान समय बाबा की हमारे प्रति जो आशा है, अपेक्षा है कि मेरे बच्चे कैसे हो, वो अपेक्षा पूरी करने के लिए जो हमें विशेष विषय मिला है आज, विजयी बनना है। बाबा की श्रीमत का पालन करने के लिए, बाबा की हर सेवा में संपूर्ण रूप से, संपूर्ण कार्यक्षमता से उपस्थित रहने के लिए ये जरूरी है कि अगर हम विजयी आत्मा है, विजयी है। किन किन बातों पर विजयी बनना है, क्योंकि जैसे आप हम सब जानते हैं कि जो परवश है, जो गुलाम है, परवश है, वशीभूत है, जिसके वशीभूत होते हैं उनका ही कहना मान करके चलना पड़ता है। जो अपने आप में विजयी आत्मा है वही संपूर्ण रूप से बाबा की श्रीमत को मान करके चल सकते हैं। तो ये हमारी जो यात्रा है, ये पुरुषोत्तम संगम युग की हमारी जो यात्रा है वो कौन सी है? यही यात्रा है कि हम धीरे 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 धीरे, जो बाबा ने कहा कि आत्माएं एकदम परवश हो चुकी थी, वो संपूर्ण रूप से विजयी बनने की यात्रा है। बाबा ने कहा कि तुम सबसे पहली परवशता जो हमारी है, जो बाबा ने आकर के हमें जगाया है, तो बाबा ने कहा सबसे पहली परवशता है विकारों की। विकारों का वर्णन तो हम सभी करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव, और इसका वर्णन करने में, बोलने में, समझाने में हम माहिर हैं। परंतु अभी जो हमें यहां मौका मिला है 5 दिन का, इस मौके का लाभ हमें इस तरह उठाना है कि हम अपने आप में देखेंगे कि हमने इन विकारों अथवा नेगेटिविटी अथवा नकारात्मक भाव के ऊपर कहां तक विजय प्राप्त किया है। एक तरफ हमारी मंजिल है, हमें संपूर्ण बनना है, संपूर्ण विजयी बनना है। विजयी बनने के लिए बाबा ने तो यहां तक हमें लक्ष्य दे दिया है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। वैसे क्या लक्ष्य दिया है बाबा ने, क्या लक्ष्य दिया है हमें, जो हम सबको बताते हैं, कौन सा लक्ष्य है? बहुत बड़ा लक्ष्य है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण हमें बनना है। श्री लक्ष्मी नारायण अर्थात संपूर्ण रूप से विश्व के मालिक। आप सोचिए, कोई भी व्यक्ति राजा बनता है तो विजय प्राप्त करके बनता है। बाबा ने कहा यही एक विशेषता है संगम युग की कि यहां आप ना युद्ध करके, किसी के साथ युद्ध नहीं करते हो, और ना यहां दान पुण्य से राजा बनते हैं, परंतु यहां जो बनते हैं वो स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करके राजा बनते हैं। तो स्वयं के लिए सबसे पहली बात, जिसको प्राइमरी बात कहे, वैसे स्थूल रूप में कहे, प्राइमरी बात कहे, तो ये बातें हैं। बाबा ने हमें जब से जन्म दिया है तब से पवित्रता की धारणा, ब्रह्मचर्य रूप में पवित्रता की धारणा ये बाबा ने कराई है। जो बाबा के बच्चे बन जाते हैं, जिनको बाबा में निश्चय हो जाता है, उनको पवित्रता की धारणा करने में कोई मुसीबत नहीं आती है, कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई मेहनत नहीं लगती है। स्थूल रूप ही कहा जाएगा, परंतु सूक्ष्म रूप में जो है वो है ममत्व, मैं और मेरापन। चाहे अपनी अच्छाइयों में, चाहे अपनी विशेषताओं में, चाहे अपनी कार्यक्षमता में, कार्य करने की पद्धति में, भिन्न भिन्न प्रकार से हमारा जो ममत्व होता है, मेरापन होता है, वो हमें हमारी इस दौड़ में, हमारी इस यात्रा में स्पीड ब्रेकर का काम करता है। हमारी आगे बढ़ने की स्पीड को कम कर देता है, रोक देता है। इसी कारण जितना हमारा ममत्व और मेरापन ज्यादा है, उतना ही फिर वो क्रोध का रूप ले लेता है। हम अच्छे हैं इसलिए हमें गुस्सा आता है, हमें क्या महसूस होता है, हम अच्छा कार्य कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता, इसलिए हमें गुस्सा आता है। हम हमेशा सत्य बोलते हैं और दूसरा झूठ बोलता है, इसलिए हमें गुस्सा आता है। हम अथक सेवाधारी बन के कार्य करते हैं, दूसरा नहीं करता, इसलिए हमें क्या होता है, गुस्सा आता है। तो बाबा कई बार मूली में कहते हैं कि क्या ये उचित है, क्या कहेंगे, कहने में हम कह देते हैं उचित नहीं है, परंतु इस बात को समझने के लिए चिंतन की आवश्यकता है। कई बार हम कह देते हैं कि उचित नहीं है, परंतु जब परिस्थिति सामने आती है और हमें जब निर्णय लेना होता है, व्यक्ति विचार करता है, तभी तो हमें स्वाभाविक रूप से हम उसके वश हो जाते हैं। बाकी जो भी विकार है उसके लिए हमें अपने आप के ऊपर चिंतन करना है, ध्यान देना है, महसूस करना है कि क्या हमें कई वस्तु धन इकट्ठा करने का तो भाव मन में पैदा नहीं होता है, मन में ईर्ष्या का भाव तो पैदा नहीं होता है, घृणा का भाव तो पैदा नहीं होता है, तिरस्कार का भाव तो पैदा नहीं होता है। ये हमें अपने आप में, अभी आपको समय मिलेगा स्वयं का ऑब्जर्वेशन करने का, स्वयं का दर्शन करने का। पहले हमें अपने प्लेटफॉर्म को महसूस करना है, डिसाइड करना है, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, फिर वहां से आगे कितना रास्ता मुझे तय करना है, और उस हिसाब से बाबा कहते हमारी गति कैसी होनी चाहिए पुरुषार्थ की। तो सबसे पहली बात है ये जो सो कॉल्ड, जिनका शास्त्रों में बाबा ने भी हमेशा वर्णन किया है, ऐसा विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने की बात है। ये जो विकार है वो बाहरी रूप से दिखता है तब पता चलता है, इसलिए दूसरी बात जो माध्यम है वो है कर्मेंद्रियों पर विजय। पहली बात है विकारों पर विजय, दूसरी बात है कर्मेंद्रियों पर विजय। विकार के वशीभूत हो जाने का जो कारण होता है वो है, जो माध्यम है वो कर्मेंद्रियां है। बाबा ने हमें सहज राजयोग सिखाया है, बड़े सहज भाव से हम योगी बन गए हैं, इसीलिए कर्मेंद्रियों का संयम हम राजऋषि है, राजयोगी है, इसीलिए कई बार कर्मेंद्रियों का संयम न होने के कारण हमारी गति की तीव्रता, पुरुषार्थ की गति में तीव्रता नहीं आ सकती, क्योंकि कोई भी कर्मेंद्रिय उसके अगर हम वश होते हैं, चाहे खाने के वश होते हैं, कुछ सुनने के वश होते हैं, हमें बोलने का ही कईयों को बहुत अच्छा लगता है इसलिए वाणी के वश होते हैं, आंखों के वश, बाबा आंखों के लिए कई बार बहुत बातें मूली में बताते हैं, आंखें ही बहुत धोखा देने वाली है। तो कर्मेंद्रियां जो काम करती है, बाबा कहते हैं कई बार कि ये कलयुग के अंदर तत्व भी तमो प्रदान हो गए हैं, शरीर भी तमो प्रदान हो गया है। बाबा कहते ये दुनिया कैसी बन गई है, छीछी बन गई है। क्या कहते हैं छीछी, छीछी अर्थात क्या, जिस छोटे बच्चों को कहते हैं कोई टच करते हाथ खराब होता है, छीछी है, टच मत करना, जिससे हाथ गंदा होता है उसको छीछी कहते हैं। तो ये दुनिया कैसी है कि हमारा बुद्धि रूपी हाथ जहां भी स्पर्श करता है और वहां अगर वो चिपक जाता है तो उसको छीछी दुनिया कहते हैं। ये कर्मेंद्रिया ऐसी बन चुकी है, ये जो प्रोसेस है कि हमें संकल्प आता है, कर्मेंद्रियों के थ्रू हम जो भी सब्जेक्ट है, विषय है, उसके संपर्क में आते हैं। कर्मेंद्रिया अकेली कुछ नहीं कर सकती, आंखों के सामने कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं है, आंखों के सामने सब्जेक्ट है कुछ ना कुछ, चाहे व्यक्ति है, वस्तु है, स्थिति है, परिस्थिति है। कानों के सामने कोई व्यक्ति है, आवाज है, परिस्थिति है, शब्द है, तब वो मन के अंदर वो कनेक्शन होता है। तो हमारी जो कर्मेंद्रिया है, कर्मेंद्रिया के थ्रू, कर्मेंद्रियों के द्वारा हम अनेक सब्जेक्ट्स, विषय, जिसको कहा विषय सागर, ये दुनिया कैसी है, इसमें विषय सागर अनेक बातें हैं, एक बात नहीं है, अनेक बातें हैं जो हमें सुनने में आती है, बोलने में आती है, देखने में आती है, संपर्क में आती है, संबंध में आती है, और वो सभी बातें कर्मेंद्रियों के थ्रू हमारे मन को भटकाने की कोशिश करती है। मन भटक जाता है, और मन अगर भटक जाता है तो अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। बुद्धि दिव्य बन जाती है, बुद्धि में ज्ञान तो आ जाता है, समझ सारी हमें आ जाती है, परंतु वो समझ के आधार पर हमारा कर्म और व्यवहार हो, उसके बीच में ये कर्मेंद्रियों के वशीभूत पना जो है, डिपेंडेंसी है, वशीभूत पना जो है, परतंत्रता जो है, अथवा परवशता जो है, वो बीच में आती है और हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने नहीं देती। इसीलिए जरूरी है, विषय कोई भी हो, विषय सागर है कोई बात नहीं, परंतु अगर हमारा कर्मेंद्रियों पर विजय है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, प्रतिकूल क्यों ना हो, परंतु कर्मेंद्रियों के पर विजय प्राप्त किया हुआ है तो हमारा निश्चित रूप से हमारे कर्म पर विजय होगा। और इसके लिए हमें चाहिए, जैसे बाबा ने कहा कि अपनी सूक्ष्म इंद्रियों के ऊपर विजय। सूक्ष्म इंद्रिय कौन सी है, मन, बुद्धि और संस्कार। संस्कार तो बने हुए हैं, वो हमें समय समय पर, परिस्थिति आने पर समझ में आता है। मैं समझती हूं कि हमेशा देखने में नहीं आता है, पर जब कार्य में आते हैं, कार्य व्यवहार में आते हैं तो संस्कार का पता चलता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि स्वयं को ही स्वयं के संस्कार का स्पष्ट रूप से पता ना हो। इसलिए कभी ऐसा अगर कार्य व्यवहार में आ जाता है तो खुद को भी खुद की ऑब्जर्वेशन करने की आवश्यकता होती है। मे बी कि हम समझते हैं, जानते हैं, तो भी समय पर कार्य करने में हमें बाधा आती है, तो कारण है कि वो हमारे संस्कार है। तो सबसे पहले क्या बदला जाता है, बुद्धि। सबसे सहज अगर कुछ बदल सकता है तो बुद्धि, क्योंकि बाबा का ज्ञान हमें समझ में आता है और बाबा हमें ज्ञान का सागर जो मिला है उतना विस्तार से ज्ञान देते हैं, तो जितना जितना हम ज्ञान का चिंतन कर सकते हैं, इसलिए बाबा हमें हमेशा कहते हैं कि दिन रात चिंतन करना सीखो, विचार सागर मंथन करना सीखो। जितना हम ज्ञान का चिंतन करते हैं बुद्धि दिव्य बनती जाती है, सब कुछ समझ में आता है। हर बात, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति हमें समझ में आ सकती है। समझ में तो आ सकती है, समझ में आ सकती है, परंतु नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? पता है, जानते हैं, समझते हैं, सब कुछ करते हैं, पर फिर भी मन कहां न कहां भटक जाता है। हम जानते हैं बुरा नहीं लगना चाहिए, पर बुरा लग जाता है। जानते हैं ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, परंतु हो जाती है। तो बुद्धि का दिव्य होना वो हमारे पुरुषार्थ की बात है। शायद लगता है मुझे कि सहज पुरुषार्थ की बात है। ये डायरेक्ट कनेक्शन है कि जितना हम मुरली बार बार पढ़ते हैं, जितना ज्ञान का विचार सागर मंथन करते हैं, जितना ज्ञान का चिंतन करते हैं, उतना डायरेक्टली उसका बुद्धि के ऊपर असर है और बुद्धि दिव्य बन सकती है। और बार बार चिंतन, बार बार हम चिंतन करते हैं, समझ आता है, तो भी बार बार चिंतन करने से वो बात धीरे 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 मन को समझ में आती है। बुद्धि तो समझती है, पर मन अनुभव के वश है। हमारे पिछले जन्मों जन्म का जो अनुभव है, जो जो बातें उनको अच्छी लगी है, जो बात में उसको रस आया है, उसके पीछे जरूर भागता है। इसीलिए मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, मन के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए बाबा ने क्या कहा है, मन जीते जगत जीत। मन के ऊपर ही बहुत सारा लिटरेचर बना हुआ है। इसलिए बाबा ने हमें सार रूप में कहा है कि मन मना भाव, क्या करो, क्या करो, बाबा कहते हैं मन मेरे में लगाओ। पर मन कौन लगा सकता है, मन कौन लगा सकता है? जिसका मन अपने पास होगा वही तो लगा सकता है। आप अपने मन के ही वशीभूत हैं, मन अपने आप भागता है, भटकता है, तो मन बाबा में कैसे लगेगा? तो मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, मन को शक्तिशाली बनाएंगे तो हम सूक्ष्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो परिणाम स्वरूप परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करने का अर्थ ये है, जैसे बाबा ने कहा कि आप माया जीत बन जाते हैं। माया जीत बनने का अर्थ ये नहीं कि आपके पास माया आएगी नहीं। परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करने का अर्थ ये नहीं कि आपके पास परिस्थिति आएगी नहीं, परंतु अर्थ क्या है, कोई भी परिस्थिति आए, कैसा भी माया का स्वरूप आए, परंतु आप अपने ज्ञान स्वरूप में कायम है। मन हमेशा विजयी है, इसको कहा जाता है माया जीत, और उसके लिए चाहिए मन शक्तिशाली। इसलिए कहा जाता है कि अगर मन को शक्तिशाली बनाना है तो उसका उपाय क्या है। बाबा मैं समझती हूँ पिछले 2 साल से हमें एक्सरसाइज करा रहे हैं, डिफरेंट भिन्न भिन्न रूप से एक्सरसाइज करा रहे हैं, और उस एक्सरसाइज का सार जो ये है, फुल स्टॉप लगाना सीखना। फुल स्टॉप लगाना अर्थात मन को विचार की श्रृंखला से बीच में रोक करके फुल स्टॉप लगाना। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप को पूर्ण विराम कहते हैं हिंदी में। पूर्ण रूप से विराम मन पा लेवे, रिलैक्स हो जाए, स्टॉप हो जाए, रिलैक्स हो जाए, स्टॉप हो जाए, उसको फुल स्टॉप कहते हैं।
तो फुल स्टॉप. बाबा कभी कभी बहुत अच्छी बात बताते हैं कि फुल स्टॉप तो इजी है ना, जस्ट पॉइंट है ना, फिजिकली कहते हैं तो फुल स्टॉप पॉइंट है. फुल स्टॉप के बदले क्या हो जाता है हमारा? क्वेश्चन मार्क. वो तो टेढ़ा बांका है. परंतु आपको शायद पता होगा कि जो हेल्दी व्यक्ति है वही फुल स्टॉप लगा सकता है. जिनको अगर पैरालिसिस हुई होती है तो उसका टेढ़ा बांका ही हो जाता है, वो फुल स्टॉप नहीं लगा सकता. कमजोर व्यक्ति स्थूल रूप से फिजिकली, हाथ कमजोर है किसी का, कुछ हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, कुछ हुआ है, तो वो फुल स्टॉप नहीं लगा सकेगा. उसी प्रकार क्या कहेंगे, कमजोर मन वाला व्यक्ति फुल स्टॉप नहीं लगा सकता. बहुत वंडरफुल होता है कि बाबा तो मूली में कहते हैं, परंतु किसी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति को सामने से कहा जाए कि बस करो ना बस, पर ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों जो है ना, वो मन से जाता ही नहीं है. आप उनको समझाओ कोई बात नहीं, जो बाबा समझाते बहुत बार ऐसा हो गया कोई, हाँ वो बराबर आपकी बात सब बराबर, पर आखिर क्यों? आप देखिए वंडरफुल बात है, मन ऐसा हीरा हुआ है चक्कर फिराने में, जो जिसको फुल स्टॉप कहते हैं. इस बात में कई बार लगता है कि अगर फुल स्टॉप लगता नहीं है तो इसका अर्थ है कि शायद हमने ज्ञान को समझा ही नहीं है. तो फुल स्टॉप लगाने के लिए तीनों ही बातें आवश्यक है, एक तो ज्ञान, दूसरा योग और तीसरा अभ्यास. तीन विधि है. एक है ज्ञान, गहराई से ज्ञान को समझना. फुल स्टॉप लगाने का अर्थ है ओके, कह लो आपके ओके, फॉरगेट, भूल जाइए, फॉरगिव, छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए, भूल जाइए, छोड़ो, है ना. और छोड़ो का अर्थ क्या है कि मन में भी उसका संकल्प ना आवे. इस बार राखी बंधन में, राखी के बाबा के पत्र में, मधुबन से जो बाबा का पत्र और राखी आती है, उसमें बड़ा अच्छा इस बार राखी का संदेश है. बहुत अच्छा संदेश है, बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ है कि भाई दिल को बड़ा करो, पहली बात. दूसरों की कमजोरियों को समाओ. क्या समाना है? दूसरों की कमजोरी को समाओ. फिर कहा उसको क्षमा भी करो, सेकंड स्टेप. और थर्ड, और उसको दुआ भी दो. कैन यू इमेजिन, बहुत अच्छा सेंटेंस है ये. मैंने कहा इतना अच्छा ये राखी का संदेश है कि आप दूसरों की कमजोरियों को समाओ, क्षमा करो और दुआ करो. ये पॉसिबल है? आप सोचिए, ये पॉसिबल है, इजी है कि मुश्किल है? क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप सबको, क्या लगता है इजी है कि मुश्किल है? हाँ, जो समझते इजी है वो हाथ ऊपर करे. अच्छा, जो समझते मुश्किल है वो हाथ ऊपर करे. नहीं, रियलाइजेशन की बात है. इजी तो मैं समझती हूँ नहीं है. नहीं है अर्थात अगर हम नहीं सोचते हैं तो नहीं है, अगर सोचते हैं तो है. ये हमारे सोचने पर है कि हम क्या करना चाहते हैं. पहली बात सोचने पर है, दूसरी बात ताकत के पर है कि हमारे में ताकत है. तो कई बार ज्ञान को समझते हुए, जानते हुए, बाबा कहते हैं वो पता है, पर करके फिर वही की वही बात आ जाती है. तो फुल स्टॉप लगाने का अर्थ है कि उसी मोमेंट हम वो बात को, परिस्थिति को फुल स्टॉप लगा दे. एक तो परिस्थिति पर आधारित, दूसरी बात तो बाबा ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि नेगेटिव संकल्पों की बात है. दूसरा स्टेप है व्यर्थ संकल्पों को भी फुल स्टॉप लगाना है. जिसके लिए जो कहावत है, मियां दुबले क्यों, क्या कहते हैं, सारे गांव की फिक्र करते हैं. हमारा जो संकल्प है कि फलाने ने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों करता है, वो आया क्यों, आया तो आया क्यों, गया तो गया क्यों, है ना, जागा तो जागा क्यों, सोया तो सोया, हमें हर बात की फिक्र, हर बात की फिक्र, इसका जानो उसका जानो उसका जानो, वहां क्या चलता है वहां क्या चलता है। हाँ, अगर हमें जिम्मेवारी मिली है कि तुम्हें सबका ध्यान रखना है कहाँ क्या चलता है तो बात दूसरी है। किसी को अगर जिम्मेवारी मिली हो, ऐसी जिम्मेवारी किसी को मिली है आज तक, किसी को दिया हो ऐसा मुझे पता नहीं है, किसी को पर्सनल बाबा ने ऐसी जिम्मेवारी दिया है कि भाई तुमको ध्यान रखना है कहाँ क्या चलता है, वही ध्यान रखो सारा दिन, ऐसा कहा नहीं। वो किसकी जिम्मेवारी है, किसकी जिम्मेवारी है, वो बैठा है कि नहीं बैठा है देखने वाला, वो तो बड़ा वंडरफुल है, वो तो बहुत वंडरफुल है, क्योंकि क्या कहता है, गलती करने वालों को क्या करो, क्या कहता है, क्या कहता है, मुश्किल काम कहता है, गलती करने वालों को गले लगाओ, भूल करने वाले का भला करो, ठोकर खाने वाले को ठिकाना दो, उनका तो बहुत बड़ा कार्य है, वंडरफुल है, समझा। ये बात हमें नहीं समझ में आने वाली है, बाबा कहता है तो भी हमें लगता है कि भाई बाबा तो क्या है कि वो ऊपर रहता है, उनको कुछ पता ही नहीं है, क्या कहते हैं, उनको क्या पता, रहना किसको है, हम क्या कहते हैं, रहना किसको है, व्यवहार में किसको आना है, वो तो हमको आना है, उनको क्या पता, तो उनको पता है कि नहीं है, क्या कहेंगे, उनको सब कुछ पता है, तो भी कहते हैं, तो वो बात को समझने को ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान, ज्ञान तो सिंपली हमें दिया हुआ है, कौन कौन सी ज्ञान की बातें बाबा ने हमें दिया है कि भाई ये वैरायटी ड्रामा बना हुआ है, क्या बात है, पहली कि ये वैरायटी ड्रामा है, ये वैरायटी फूलों का गुलदस्ता है, कोई फूल हो सकता है, कोई कली हो सकती है, कोई पत्ता हो सकता है, कोई किस कलर का, कोई किस कलर का, है कि नहीं है। तो मन में इस बात को बार 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 चिंतन में लाना है, समय अनुसार ही नहीं, परिस्थिति के अनुसार ही नहीं, परंतु एक नियमित रूप से इन बातों को बार बार चिंतन में लाते हैं तो समय पर वो काम में आता है। डायरेक्टली कोई युद्ध में जाता है तो अच्छा युद्ध नहीं कर सकता है, इवन ये क्रिकेट खेलने वाले होते हैं तो क्रिकेट नहीं होता है तो भी क्या करते हैं, हमेशा अभ्यास करते हैं, अभ्यास नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, वो एनर्जी बनी नहीं रहती है। तो उसी प्रकार हमें नियमित रूप से इन बातों का कि ये ड्रामा है, वैरायटी ड्रामा है, और बाबा ने जो कहा है दूसरी बात, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ये ड्रामा जो है वो कल्याणकारी ड्रामा है, वैरायटी ड्रामा जो बना हुआ है वो कल्याणकारी वैरायटी ड्रामा बना हुआ है, हर आत्मा का उसमें अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा की परफेक्शन की पोजीशन भी अपनी अपनी होंगी, है कि नहीं है, सभी की एक जैसी परफेक्शन की पोजीशन नहीं होंगी, सबका परफेक्शन अपना अपना, परफेक्ट सभी बनेंगे पर तो भी हर एक की अपनी लिमिटेशन है, उस बात को हमें समझना है फुल स्टॉप लगाने के लिए, समझा। फुल स्टॉप लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ड्रामा की बात को समझना है, ड्रामा वैरायटी आत्माओं का बना हुआ है, ड्रामा कल्याणकारी है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो बाबा कहते हैं कि अगर इन बातों को ध्यान में रखेंगे, बार बार चिंतन में लाएंगे, ये ज्ञान जितना बुद्धि के अंदर बैठा हुआ होगा उतना हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं, ओके करके हम बात को छोड़ सकते हैं, भूल सकते हैं, तो फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो ज्ञान की बातों का चिंतन, दूसरी बात है योग। जैसे कहा कई बार ज्ञान समझ में आता है पर मन मन स्थिर रह नहीं सकता है। तो बाबा को जितना याद करेंगे, जितना जितना हम बाबा को याद करते हैं, बाबा को याद करना वो तो आप सभी को आता ही है कि आत्म रूप में स्वयं को स्थित करते और बाबा को याद करना, समझा, ये अपने आप को देखना है कि कहां तक हम स्वयं को, बाबा कहते मैं जो हूं जैसा हूं, मैं जो हूं जैसा हूं मुझे याद कर, तो उस रूप में जितना याद करते हैं स्वयं को आत्म रूप में स्थित करके, बाबा कहते मैं जो हूं जैसा हूं मुझे याद कर, है ना, अपने को बिंदु समझ करके और बाबा को भी उनके बिंदु स्वरूप में याद करते हैं, उसको कनेक्शन कहा जाता है, उसको याद कहा जाता है। और वो कनेक्शन से जितना समय वो कनेक्शन रहता है उससे आत्मा में ताकत आती है, मन शक्तिशाली बनता है, और मन शक्तिशाली बनता है तो वो ताकत आती है फुल स्टॉप लगाने की। अगर फुल स्टॉप लगाने की ताकत नहीं होती है तो मन, आज दुनिया में लोग आप देखो जितना समय बढ़ता जाता है, सबसे मुसीबत की बात अभी ये हो रही है कि जिसको हम डिप्रेशन के केसेस कहते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन के विचारों को रोक नहीं सकते हैं, फुल स्टॉप लगा नहीं सकते, तो वो तो दूसरी बात हो गई। पर हमारा भी मन कमजोर होने का कारण क्या है, हम फुल स्टॉप लगा नहीं सकते। हम ज्ञानी हैं, हम योगी हैं, हम मूली पढ़ते हैं, हम सेवा करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, पर बाबा जो चाहते हैं उतना हमारा प्रभाव हो वो नहीं होने का कारण क्या है, कि मन उतना शक्तिशाली नहीं बना है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगाओ। और तीसरी बात है अभ्यास। तो बाबा, आप देखो बाबा ऑलमाइटी हमें कितना भिन्न भिन्न प्रकार से युक्ति बताते हैं। आपको याद होगा कि बाबा ने हमें इस वर्ष गए वर्ष के पहले वर्ष में बाबा ने 5 स्वरूपों का अभ्यास बताया। क्यों बताया? बाबा युक्ति युक्त हमें मन में फुल स्टॉप लगाने की युक्ति बताते हैं कि 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, बीच बीच में अभ्यास करने का अर्थ ये है कि जो भी मन में चलता है उसको स्टॉप करके फिर वो बात करो। फिर बाबा ने कहा घंटे घंटे में आप कम से कम आधी मिनट भी, जो अभी हमारा ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा है तो आधी मिनट भी, फ्यू सेकंड्स भी आप फुल स्टॉप लगा करके याद करने का अभ्यास करो। तो अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना उतना हम फुल स्टॉप लगा सकेंगे, और वो फुल स्टॉप लगाते 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 ही मन शक्तिशाली बनता जाता है। तो शक्तिशाली मन उसको कहा जाता है जो बाबा हमें कहते हैं कि आप जितना समय जहां बुद्धि को लगाना चाहो उतना समय वहां मन को, बुद्धि को लगा सको, उसको कहते हैं शक्तिशाली मन। और वो अगर लगाने का हमें अभ्यास होता जाएगा तो आप सोचिए कि हम जहां चाहे वहां ही मन को लगा सकते हैं, तो विजय तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है। और जो ऐसा विजयी आत्मा है वही बाबा की यथार्थ रूप से सेवा कर सकता है। तो इसीलिए अभी समय मिला है, आप सभी का बहुत अच्छा संगठन है जिन्होंने अपने आप को बाबा की सेवा में अर्पण किया है, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। तो जो अर्पण हुए हैं बाबा को, जो समर्पण हुए हैं उनको चांसेस भी बहुत है, बाबा की भी बहुत प्यार की दृष्टि आप हम सबके ऊपर है। तो ये जो समय मिला है उस समय में मैं समझती हूँ कि ये स्टडी का समय मिला है, सेल्फ रियलाइजेशन का समय मिला है, तो इन समय में जो समय मिला है उनका बराबर लाभ उठाने के लिए सबसे पहली बात है कि आप ये जो 4 दिन है, आज के बाद 4 दिन है, तो संपूर्ण रूप से आप मौन रखें। बाहर का पहले तो मुख का मौन रखेंगे, मुख का मौन रखने के बाद फिर मन में जो बाबा का चिंतन चलेगा और वो चलते 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 आप मन के मौन का अभ्यास करेंगे, मन के मौन का भी अभ्यास। और मन का मौन का जितना अभ्यास होगा उतना मन शक्तिशाली बनेगा। और यहाँ से जो भी अपनी दादियां और बड़े वरिष्ठ भाई वगैरह जो भी अपने अनुभव की बात कहेंगे वो आपके मन में एज इट इज उतर सकती है। उसके लिए बैकग्राउंड तैयार चाहिए, तो आप भी अपना बैकग्राउंड तैयार करेंगे, मन में लक्ष्य रखेंगे, तो मैं समझती हूँ कि ये जो भट्ठी का समय मिला है, आप समय लेकर के आए हैं, तो एक निश्चित रूप से अपना परिवर्तन महसूस करेंगे। तो अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, बाद में फिर 7 बजे सभी दादियां आएगी और उस समय फिर हमारा विधिवत भट्ठी का उद्घाटन रहेगा। ओम शांति।
Johnny.